आयिर्याणम् नमो वच्छायानम् नमो लोये सौसाहूणम् ईशो पञ्च नमो यारो सौ पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषीम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की छठा पाठ श्रावक। पहला प्रश्न था श्रावक किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं। उत्तर था श्रावक उसी को कहना चाहिए जो उस शब्द के अनुसार उनमें लक्षण पाए जाते हों। श्रावक शब्द के अनुसार लक्षण पाए जाने का अर्थ ये है, श्रायने पुस्तक खोला कि नहीं खोला, श्रायने श्रद्धावान, वयने विवेकवान, कयने क्रियावान। श्रावक का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आचरण जिसमें पाया जाता है उसे श्रावक कहते हैं। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान को ही हम श्रावक कहते हैं। पुस्तक लेके ही बैठना है सबको, क्लास के जो अनुशासन रहेगा उसको पालन करना चाहिए। या आने का मतलब ये नहीं है कि अपन आके बैठने लगे। कुछ सीखना है और कुछ करना है, पाना है अपने जीवन में। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, छठा पाठ है, पेज नंबर 9। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। सा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक और क यानी क्रिया। श्रावक को कैसे रहना चाहिए? श्रावक को सर्वप्रथम श्रद्धावान होना चाहिए। किसके प्रति श्रद्धा, प्रश्न उठता है। किसके प्रति श्रद्धा? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के प्रति, सच्चे तत्वों के प्रति श्रद्धा। यानी कि अपने जीवन में जो हितदायी है, अपने जीवन का कल्याण करता है, जो अपने जीवन निर्माण कर सकता है, उस रास्ते पर हित करना, श्रद्धा करना, उसका ही श्रद्धा करना जो हमारे लिए हितकारक है, और जो अहितकारक है उसकी श्रद्धा नहीं करना। हितकारक क्या है और अहितकारक क्या है, ये हमारे लिए विचार तो आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अहितकार को ही हम हितकार समझ करके बैठे रहते हैं। जैसे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, फिर भी हम अज्ञानता के कारण से उसको हित का कारण समझते हैं, या तो उनसे भयभीत रह करके हम उनके अधीन होकर के काम करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग कुदेव से डरते हैं, डरते कि नहीं डरते, अपने घरों में से जो कुदेव हैं उनसे डरते रहते हैं, लाए हैं उनको और क्या कह करके रख दिया है, कुल देवता बनाकर। बाजार से लाते समय कुल देवता कहा, उसको लाए घर में रखा और उससे डरते रहे। अगर न लाते तो क्या डर लगता, पहले से न लाते तो कुदेवों से क्या डर लग सकता था, लेकिन लाने के बाद ये मानसिकता बन जाती है कि लाए हैं तो उससे हम डरेंगे भी, और ये डर वस्तुतः व्यर्थ है या उचित है, हम व्यर्थ ही डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। वो कुछ कर सकते हैं क्या हमें, भला बुरा नहीं है, बिल्कुल करने की कोई ताकत नहीं उनमें। सम्यक दृष्टि जीव, कई लोगों ने मिथ्या तो छोड़ दिया, सम्यक दर्शन धारण कर लिया है, तो क्या उनका सब अनिष्ट करते बैठे हैं कुदेव। कुदेव है ही भी कहाँ, आप कल्पना करते हैं कुदेव है ही नहीं, अपनी मानसिकता को ठीक कर लो, कुदेव है ही नहीं दुनिया में, और वो कुछ करते भी नहीं। जो है वो सच्चा देव है, सच्चा देव कौन है, तो अरहंत भगवान। अरहंत देव भगवान वीतरागी होने से सच्चे देव हैं, और कुदेव जो हैं वो राग द्वेष आदि से युक्त होते हैं, और राग द्वेष युक्त होने के कारण से वो कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन पंचम काल में तो न कुदेव दिखता है न सुदेव दिखता है, कोई भी आते नहीं यहाँ, और अच्छा है अपने लिए, कोई आते ही नहीं है तो हमारा कौन बिगड़ने वाला, कौन हमारा कुछ बिगड़ सकता है क्या, कोई आते नहीं यहाँ, और यदि आएंगे भी तो बिगाड़ नहीं सकते। हमारे दिल में यह भ्रम है कि कुदेव कुछ कर देगा, कुदेव कुछ हमारा बिगाड़ देगा, डरते रहते हैं। ये डर जो है किस कारण से हो रहा है अपने मन में, पहचानो आप, अज्ञान के कारण से तो है। अब अड़ोसी पड़ोसी के कारण से भी हमारी मानसिकता बनती है, वो पड़ोसी क्या कहता है कि तुम्हारे ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तुम्हारे ने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तो उनकी बातों को सुन करके भी हम मानसिकता बना लेते हैं, और इस बीच में क्या होता है कि हम सच्चे धर्म से तो वंचित हो जाते हैं, सच्चे क्रियाओं से वंचित हो जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से वंचित हो जाते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है दक्षिण में, ये दक्षिण भारत मिथ्यात्व में डूबा हुआ है वर्तमान में, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, अज्ञान। हम जैन शास्त्र पढ़ते नहीं, जैन धर्म समझते नहीं, और न समझने का परिणाम है कि हमारे कुल परंपरा में वह मिथ्यात्व सैकड़ों सालों से चला आया, मंदिरों में देखें तो मिथ्यात्व, बाहर देखें तो मिथ्यात्व, हमारे दिल में मिथ्यात्व के अलावा है ही कहाँ, कुछ है क्या दूसरा, कुछ भी नहीं। ऐसा होकर के बहुत घाटा लगा है, जैन धर्म दक्षिण में टिका नहीं, सैकड़ों सालों से नष्ट हुआ है, केवल हम बचे हैं अज्ञानी, और धर्म टिकता है आत्मा में, व्यक्ति में टिकता है, संस्कृति धर्म सभ्यता ये कहाँ टिकती है, जड़ पुद्गल वस्तु में क्या, हम लोगों में धर्म को टिकाना कहाँ, अपने आत्मा में क्या कहीं जमीन पर? धर्म तो अपने आत्मा में उगता है। देखो, अपने धर्म के प्रति अपने को गर्व नहीं है, अपने धर्म के प्रति अपने को आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, तो हम बेकार हैं। हम धर्म के भी दुश्मन हैं, देश के भी दुश्मन हैं और समाज का भी दुश्मन हैं। जब अज्ञानी रहेंगे तो हम सबके दुश्मन बन जाएंगे। अज्ञानता सबका अनर्थकारी विषय है। वो अज्ञानी जीव ही अपना नुकसान करता है कि ज्ञानी जीव अपना नुकसान करता है? अज्ञानी जीव अपना नुकसान करता है। समाज का नुकसान कौन करता है? अज्ञानी जीव। धर्म का नुकसान कौन करता है? अज्ञानी जीव। देश का नुकसान कौन करता है? अज्ञानी जीव। देश में भ्रष्टाचारी जो चलती है वो किस कारण से चलती, किन लोगों से चलती है? देश का जो दुश्मन बन जाता है, देश का जो गद्दार बन जाता है, वो कौन बनता है? अपने देश के प्रति समर्पित जो नहीं है वो देश का गद्दार नहीं क्या? वो गद्दार तो है, लेकिन ये क्यों बनता है? अज्ञान के कारण से। ये अज्ञानता कहाँ से आई? हमारी मूल निधि है, ये अनादिकाल से साथ चली आ रही है अज्ञानता। अब इस ज्ञान को देने वाले कौन? ज्ञान को तो गुरु ही दे सकता है, ज्ञान को तो भगवान ही दे सकते हैं। गुरु का ज्ञान और अरहंत का ज्ञान, ये दोनों हमारे जीवन में चार चांद लगाते हैं और देश को सुखी रखने में, समाज को सुखी रखने में, व्यक्ति को सुखी बनाने में सहयोग देता है गुरु का ज्ञान। और हम क्या करते हैं वर्तमान में? गुरु आ गए तो भागते हैं, गुरु आ गए तो उदासीन रहते हैं, गुरु आ गए तो बहुत बड़ा अपने को बोझा लगता है। ये कितनी मूर्खता है। कौन सुनेगा, कौन करेगा, कौन टाइम निकालेगा? धर्म तो चार लोगों का है, हमारा तो है ही नहीं, ऐसा समझते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं लोग बाजार में, धर्म किसका है? हाँ, लगे हैं, धर्म समझने लगे हैं, लेकिन अज्ञान अवस्था में लोग कहते हैं उनको कुछ काम नहीं है, धर्म करता है। कहते कि नहीं कहते? सही, सच बताओ, मुझे सब मालूम है, हो रहा है। अगर ऐसा कोई कहता है तो उस प्रकार से कहने वालों को कुछ समझाने के लिए तुमको ज्ञान तो चाहिए कि मूर्ख है वो बोल रहा है, उसके लिए क्या समझाएं? मौन होगा क्या? मौन बैठने से भी काम नहीं चलता। मौन बैठोगे तो कहेगा कि देखो ये मूर्ख कुछ नहीं जानता, फिर भी मंदिर जाता है, कुछ काम तो रहता नहीं, और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कहता नहीं कहता? बाजार में यही स्थिति है लोगों की, ऐसे मूर्ख लोग ज्यादा हैं बाजार में। और उसी कारण से क्या हो रहा है, चार लोग जो धर्म कर रहे हैं वो धर्म को छोड़ के बैठ रहे हैं। और ऐसा संबंध रहता है परस्पर जीवन जीने का कि 10 जन मूर्ख रहते हैं और एक ज्ञानी रहता है, तो उस ज्ञानी का एक का कुछ नहीं चलता और उसमें शामिल हो जाता है। महाराज मेरा अपमान करते हैं, क्या करूं? और ऐसे धर्म को न जानने वाले, सभ्यता संस्कृति को, समाज को न जानने वाले मूर्ख लोगों की संख्या अधिक है। और ऐसा मूर्ख बनकर के कब तक रहोगे? ऐसा नहीं रहना है, जिंदगी को बनाना है। धर्मात्मा की निंदा करना महापाप है। चार लोग धर्म कर रहे हैं तो उसको उपहास करना महापाप है। ऐसे पाप करेंगे तो नरक के अलावा कोई स्थान नहीं, और फिर व्यक्ति ఈ లోక్ మే భీ సుఖీ నహీ రహేగా ఔర్ పర్ లోక్ మే భీ సుఖీ నహీ రహేగా. ఇస్ లోక్ మే జో సుఖ మిల్తా హై వో ధర్మ సే హీ మిల్తా హై. తుమ్ అజ్ఞానీ బన్ కర్కే మూర్ఖ రహ కర్కే సుఖ కా ఆనంద నహీ కర్ సక్తే. యే నిశ్చిత బాత్ హై. అజ్ఞానీ సుఖ కీ అనుభూతి నహీ కర్ సక్తా, గ్యారంటీ హై. ఔర్ ఇసిలియే భారత్ మే తీర్థంకరో నే జో ధర్మ ఔర్ జ్ఞాన్ దియా హై, వహ జ్ఞాన్ దేశ్ కా కళ్యాణకారీ హై, సమాజ్ కా కళ్యాణకారీ హై, వ్యక్తి వ్యక్తి కా కళ్యాణకారీ హై. ఉస్కా హమే అధ్యయన్ కర్నా చాహియే ఆజ్. ఆప్ లోగ్ స్వాధ్యాయ క్యూ నహీ కర్తే ఘర్ ఘర్, క్యా హో గయా హై జైనో కో? అబ్ తో కర్నా చాహియే. జ్ఞాన్ ఆ రహా హై, సమజ్ ఆ రహీ హై. సమాజ్ కో బచానా హై, పరివార్ కో బచానా హై, ఖుద్ కే జీవన్ కో, పరివార్ కో, సమాజ్ కో సుఖీ బనానా హై. తో యే సబ్ కర్తవ్య కర్నే పడేంగే. పహలా కామ్ జ్ఞానీ బన్నా. ఫిర్ ఉస్మే సే జ్ఞాన్ జితనా మిల్తా హై, ఉస్మే జితనా సమజ్ మే ఆయా, ఉతనా అప్నే జీవన్ కో ఆచరణ సే బనానే కా ప్రయత్న కర్నా హై. దో కామ్ హై, పహలా జ్ఞానీ బన్నా ఔర్ జితనా బన్ సకే అప్నే జీవన్ మే ఆచరణ భీ కర్తే జానా. దో మార్గ హై సుఖీ బన్నే కే, ఏక్ శ్రమణ మార్గ ఔర్ ఏక్ శ్రావక మార్గ. దో యే హై నా, ఏక్ ముని మార్గ హై ఔర్ ఏక్ శ్రావక మార్గ హై. శ్రావక బన్ కర్కే జీవో తో సచ్చా శ్రావక బన్ కర్కే జీనా, డూప్లికేట్ శ్రావక నహీ బన్నా. ఔర్ ముని బన్ కర్కే జీనా చాతే హో తో సచ్చా ముని బన్ కర్కే హీ జీనా, డూప్లికేట్ ముని నహీ బన్నా. తో సుఖ హై. ఇధర్ హమ్ డూప్లికేట్ ముని బన్ గయే తో బహుత్ బడా దుఖ హై, ఔర్ ఉధర్ ఆప్ డూప్లికేట్ శ్రావక బన్ గయే తో బడా బహుత్ బడా దుఖ హై, హాని హై. ధర్మ కే లియే హాని, సమాజ్ కే లియే హాని, సంస్కృతి కే లియే హాని, దేశ్ కే లియే హాని, సబ్ కే లియే హాని. తో అప్నే కో బహుత్ సమర్పిత హోకే రహనా హై, సమాజ్ కే ప్రతి కుచ్ కర్నా హై. ప్రత్యేక ఘర్ కా, కితనే ఘర్ హై యహాన్? 100 ఘర్ హై. ప్రత్యేక ఘర్ కీ జిమ్మేదారీ హై జైన్ ధర్మ కో బచానా, జైన్ ధర్మ కో పఢనా, గురువో కే సంకేతో కో సమజ్నా, ఉస్ పర్ చల్నా. ప్రత్యేక ఘర్ కీ జిమ్మేదారీ హై క్యా నహీ? है क्या नहीं? मैं तीन बार शुद्धि बुलवा लेता हूं. बोल शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मैं आहार देता हूं. मैं तीन बार शुद्धि बुलवा लेता हूं. क्यों बुलवा लेता हूं? न मालूम उस आहार को कैसे कैसे तुमने तैयार किया है. आहार जो बनता है पाप से ही बनता है, लेकिन मैं जो लेना चाहता हूं वो निर्दोष आहार लेना चाहता हूं. सदोष आहार लेकर के मन को आत्मा को दूषित नहीं बना चाहता हूं. दूषित नहीं बनाना अपने को. डालो तो आहार ऐसा डालो जो परिशुद्ध है. परिशुद्ध आहार डालोगे तो गुरु गुरु बन करके रहेगा, नहीं तो गुरु पद से गिर जाएगा. उनके व्रत गिर गए तो गुरुपना गिर गया, उनका चारित्र गिर गया, उनका संयम गिर गया, तो गुरु अवस्था गिर गई. आहार के टाइम कितने सावधान रहते हैं गुरु? आप लोग इतनी सावधान रहते हैं? क्या खा रहे हैं? विचार नहीं, भक्ष्य क्या अवक्ष्य पता नहीं, कैसे बनाया पता नहीं, सब खाते जाते. बुद्धि बढ़ेगी कैसे? शुद्ध आहार खाने से बुद्धि विकसित होती है कि अवक्ष्य खाने से? शुद्ध तो खाना पड़ेगा, आखिर ये शरीर जो है पेट जो है म्युनिसिपालिटी का डब्बा तो नहीं, म्युनिसिपालिटी का डब्बा वो कचरा फेंकते यहाँ चौराहे पर है, अपना शरीर ऐसा डब्बा तो नहीं इसमें कुछ भी डाला जाए। ये म्युनिसिपालिटी का डब्बा नहीं, बहुत बड़ा पवित्र धर्म रूपी अमृत को रखने का डब्बा है। जैसे आप दूध रखते हैं तो कितना मांजते हैं उस पदार्थ को, ये पात्र को, बर्तन को, कितना साफ सुथरा कर देते हैं, बहुत साफ करके उसमें जरा भी कुछ भी न बचे फिर बाद में दूध डालते हैं। ज्ञान वहीं टिकता है जहां पर भोजन की शुद्धि है, ज्ञान वहीं टिकता है जहां पर भोजन की शुद्धि, अवक्ष खाने वालों में ज्ञान टिकता नहीं। ज्ञान के साथ साथ आचरण भी आवश्यक है। कैसा आचरण? खाने पीने में शुद्धता रखना, ये सबसे बड़ा आवश्यक कार्य। ये आचरण जिसके घर में होता है वहां पर बुद्धि विकसित होती है, उनके घर के बच्चे भी बुद्धिमान बनते हैं, घर का परिवार सद्बुद्धि वाला होता है। कल्याण तो वहीं होता है जहां पर आहार की शुद्धि होती है। इसमें भी सुधार लाना है। हमने संकेत दिया था आहार पदार्थों की काल मर्यादा का एक चार्ट है, उसको प्रकाशित करके घर घर देना। लोग चाहते हैं कि उसके अनुसार हम चले, रखा हुआ है, उसको प्रकाशित करना है। और बड़ा एक कैलेंडर होता है ना, घर में कैलेंडर लटके रहते हैं, उस कैलेंडर टाइप से उसको छपा करके घर में देना है। प्रत्येक घर में, जैन घरों में वो रहेगा, जो खाएंगे उसके अनुसार खाएंगे पिएंगे, खाने पीने में कुछ भी विवेक नहीं है समाज में, अशुद्ध खाते हैं इसलिए ये सब कुछ अनर्थ होता है। खान पान में अगर सुधार आ गया समाज में तो बहुत कुछ सलट जाएगा। फिर ज्ञान विकसित होगा, फिर बुद्धि विकसित होगी, फिर दया करुणा धर्म सब कुछ आएगा। वो एक पूछना कि महाराज हम उसको प्रकाशित करेंगे और घर घर लगाएंगे, किसी को चिंता नहीं है, हम मैं संकेत देता जाता हूँ, चुपचाप सुनना और एक कान से सुनना एक कान से छोड़ते जाना, ऐसा हो रहा है। कोई आकर के श्रावक ये नहीं पूछता कि महाराज आपका कोई प्रकाशन हम करना चाहते हैं और कोई लोगों को भी लाभ मिले, ज्ञान मिले, ऐसी कोई चीज हो तो हमको दे, वो हम छपाएंगे, कोई आकर के नहीं पूछता है? समाज के लिए और खुद के लिए कुछ करना चाहो कि नहीं तो सबको परस्पर में मिल करके जीना है, हिल मिल करके रहना है, हिल मिल करके कार्य करना है, हिल मिल करके प्रभावना करना है और जैन धर्म की प्रभावना करके दिखाना है। पेट वड़गांव में जैन धर्म की प्रभावना चाहते हो या इसको सुखाना चाहते हो? खूब प्रभावना होनी चाहिए इस चातुर्मास में, प्रमाद छोड़कर। कितने नाम आ गए? कल कहा था पूछूंगा। हाँ, 30 आ गए, 40 के लगभग हो गए, अभी कितने होंगे? 100 घर हैं, 40 हो गए, अभी कम से कम भी 50, 50 क्या 60, 100 घर हैं। कंपलसरी बनाओ सब घर में से एक व्यक्ति आएगा। हाँ, ये एक व्यक्ति जरूर इस पूजन में बैठेगा। ये जैन संस्कार की पूजाएं हैं, सपने में भी तुम लोगों ने नहीं देखा और पहली बार कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और यहाँ भाग लेना ही पड़ेगा। ऐसा सामाजिक कानून, सामाजिक अनुशासन निकालना है। हाँ, नहीं उनको आना है, पछताना भी नहीं बाद में, उनको आना है, उनको खींच के लाना है। नहीं भी आता है तो कान पकड़ना है, और उनको खाने पीने को नहीं मिलता है आने से, तो उनको भोजन भी देना है। ठीक है ना, थोड़ी कमाई में कुछ कम पड़ रही हो तो उस कमाई 10 दिन की कमाई को देना है उनको। कुछ आनाकानी करेगा ना, सुनना नहीं उनका। समाज का हिस्सा है, समाज का अंग है, समाज का सुनना पड़ेगा, समाज का करना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा। हम धर्म के लिए समाज की तरफ से क्या कर रहे हैं बताओ है? संसार के लिए तो समाज में हिल मिल करके रहते हैं, सब कुछ काम करते हैं। क्या धर्म इतना बेकार वस्तु है जो धर्म के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते? धर्म आपका अंग है, ध्यान रखना। आप समाज में हैं, जैन हैं, तो आपका अंग है, आपको ये करना ही पड़ेगा, और समर्पित होकर, जबरदस्ती में नहीं। समर्पण आपको होना पड़ेगा, अपने मन से होना पड़ेगा, मन से ही करना पड़ेगा है क्या नहीं? हमारे हाथ में से देश जा रहा हो तो मरने को तैयार होगे या लड़ोगे? लड़ करके जिंदा रहोगे क्या लड़े बिना मरोगे? घर से बाहर निकलोगे या घर में ही मरोगे? आत्महत्या करोगे? मैं लड़ नहीं सकता, आत्महत्या करूंगा, ऐसा करोगे क्या? धर्म को बचाने के लिए भी तुम्हें कमर कसना है। धर्म बचेगा तो ही देश बचने वाला है। स्वतंत्रता मिली है भारत को, और स्वतंत्र देश में हम जो धर्म स्वतंत्र है, ऐसे आत्म कल्याणकारी, देश कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी धर्म है, उन तत्वों को, उस धर्म के तत्वों को अध्ययन करना है और उसका प्रचार करना है, उसको जीवन में समर्पित होकर के अंगीकार करके जीवन बनाना है। इसमें प्रमाद नहीं करना है, और इसमें प्रमाद करोगे तो डूब गया। पहले खुद हम डूबते हैं, फिर समाज को डुबोते हैं। पहले हम धर्म को डुबोते हैं, फिर खुद को डुबोते हैं, फिर समाज डूबता है, फिर देश डूबता है। ऐसा होता है, ये चिंतनशील हो जाओ धर्म के प्रति जरा। आज तक धर्म के संबंध में कुछ भी चिंतन नहीं किया हमने, कितनी दुर्भाग्य की बात है। केवल सांसारिक जीवन जिया है, गुलामी जीवन जिया है, स्वतंत्र का जीवन तो जिया ही नहीं, गुलामी का जीवन जी चुकी है, और ऐसे कब तक जिएंगे? उत्तम कुल में जन्म लेकर गुलामी का जीवन जीना शोभा नहीं देता। तीर्थंकर वंशज, तीर्थंकर भगवान के वंशज हो, तीर्थंकरों के कुल में पैदा हुए हो, ये गौरव की बात है। उसका इज्जत रखना पड़ेगा क्या नहीं? जिम्मेदारी है क्या नहीं? कुल में पैदा हुए हैं तो कुल की इज्जत, जाति की इज्जत, धर्म की इज्जत, गुरुओं की इज्जत, शास्त्र की इज्जत रखना पड़ेगा क्या नहीं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सबकी। कल और पूछूंगा। 60 की संख्या चाहिए अभी। ये करना ही है। जो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान होता है, जैन धर्म के तत्व कैसे हैं, शुद्ध हैं क्या अशुद्ध हैं, खरे खरे हैं क्या झूठ झूठ हैं, विश्वास है ना, विश्वास है क्या नहीं, उन्हीं तत्वों को हमें अध्ययन करना है। श्रावक शब्द की परिभाषा बताई गई, जो श्रद्धावान विवेकवान तथा क्रियावान होता है उसे श्रावक कहते हैं। श्रद्धा सर्वज्ञ भगवान के प्रति, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी जो तीन लोक को एक साथ जानते हैं, लोकालोक के जो ज्ञाता हैं उनको सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ के प्रति श्रद्धा और उनके आचरण के प्रति श्रद्धा। सर्वज्ञ भगवान वीतरागी हैं, वीतरागता का आचरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा। अथवा सच्चे देव कहो, सच्चे गुरु कहो, सच्चे शास्त्र के प्रति श्रद्धा कहो, इनके प्रति श्रद्धा। उसी को अपने जीवन में शक्ति के अनुसार विवेक के साथ क्रिया में लाता है तो उसे ऐसे श्रावक को ही श्रावक संज्ञा होती है। संज्ञा यानी नाम, श्रावक नाम होता है। श्रावक शब्द का अर्थ निम्नलिखित है, श्रा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, क यानी क्रिया। श्रद्धा सम्यक्त्व रूप है, विवेक ज्ञान रूप है और क्रिया चारित्र रूप है। श्रावक के तीन भेद हैं, ये आज समझेंगे। कौन कौन से? पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक। कोई बाजार में आपसे पूछता है तो उत्तर तैयार रहे। बाजार में पूछता है कि श्रावक कितने प्रकार के होते हैं आपके यहाँ, तो बताना चाहिए हमारे यहाँ तीन प्रकार के श्रावक होते हैं। कौन कौन से? पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। श्रावक कहते ही समझ में ये आना चाहिए, श्रावक यानी उनमें श्रद्धा भी होती है, ज्ञान, हाँ ज्ञान यानी विवेक, ज्ञान भी होता है, विवेक पूर्ण ज्ञान होता है, विवेक रहित ज्ञान नहीं, विवेक पूर्ण ज्ञान होता है। क्रिया होती है, कैसी क्रिया? समीचीन क्या असमीचीन, समीचीन क्रिया होती है, तो इसको हम श्रावक कहते हैं। और यदि श्रावक की कोटि में नहीं है तो उनको कल कहा था, क्या कहा था, शब्द दिया था, यदि श्रावक नहीं है तो वो क्या है? गृहस्थ है। गृहस्थ तो हम जन्म से हैं, जब से पैदा हुए, घर में ही पैदा हुए, आकाश में तो नहीं पैदा हुए हैं, घर में ही पैदा हुए और घर में ही रहते हैं। घर में रहने वाले को गृहस्थ बोलते हैं और घर के त्यागी को क्या बोलते? घर के त्यागी को, वस्त्र तो नहीं छोड़ा और घर त्याग कर दिया, अलग छुलक हो गया, तो वो किस कोटि में आते हैं? गृहस्थ के कोटे में कि श्रावक के कोटे में? हाँ, श्रावक के कोटे में आएंगे। आइलक महाराज और छुलक महाराज, इन दोनों में अंतर मालूम है? कल किसी ने पूछा था आइलक छुलक में क्या अंतर होता है, कभी आए कि नहीं पेट वड़गांव कोई महाराज, आइलक हो छुलक हो, आए देखा है? आए आइलक कैसे होते हैं? आइलक महाराज किस प्रकार रहते, उनका बाहरी वेशभूषा क्या है? एक लंगोटी होती है, पिंची का मंडलू रहता है और वे मुनि की तरह नियम से केश लोंच करते हैं और गाड़ी में घूमते नहीं, विहार नहीं करते, पैदल नियम से पैदल ही विहार करते हैं और भोजन हाथ में बैठ करके, मुनि भी हाथ में लेते हैं, अहलक भी हाथ में लेते हैं लेकिन बैठ करके, पाटे पर बैठ करके हाथ में लेते हैं। हाथ हाथ में नहीं, कटोरे में तो छुल्लक, छुल्लक ये अहलक की चर्या है, डिफरेंस बता रहा हूँ। छुल्लक और अहलक में क्या है ये ध्यान में रखना है। अहलक क्या करता है, नियम से पैदल ही विहार करते हैं और केश लॉन्च करते हैं। भोजन कैसे लेते हैं, मुनि की तरह हाथ में भोजन, खड़े होकर क्या बैठकर, बैठकर लेते हैं, वो अहलक। और प्रतिमाएं इनकी कितनी होती हैं, अहलक की, अहलक की कितनी प्रतिमाएं होती हैं, 11 प्रतिमाएं होती हैं। प्रतिमा कितनी प्रकार की होती हैं, 11, पूरे 11 के 11 प्रतिमा अहलक पालन करते हैं। ये हो गया, विशेषताएं बता दी, मुख्य रूप से केश लॉन्च करना, पैदल विहार करना, गाड़ी में नहीं बैठना, हाथ में एक बार भोजन करना, दो बार नहीं एक ही बार बैठ करके हाथ में भोजन करते हैं, और लास्ट वाला बताया क्या, वो 11 प्रतिमाएं होती हैं। वो 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो घर में जाकर के पढ़िए, यहाँ पर प्रतिमा का भी पाठ है, पेज नंबर 29 पर है, देखो तुम्हारा 29 पर, बिल्कुल ठीक है, 29 पर ये प्रतिमा क्या होती है श्रावक की, इसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो घर में जाकर के उस पाठ को एक बार पढ़ें, फिर हम जब समझाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सुनिए, मैं तुलना करके बता रहा हूँ, छुल्लक और अहलक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है आचरण में और बाहरी वेशभूषा में। अहलक के वस्त्र कितने होते हैं, एक क्या लंगोटी, मराठी में भी लंगोटी बोलते हैं, हाँ लंगोट एक होता है, और छुल्लक के लिए वस्त्र दो होते हैं, छुल्लक यानी छोटा, अहलक यानी उनसे बड़ा, यानी 11वीं प्रतिमा को पालन करने वाले एक छोटे हैं और एक बड़े हैं, दोनों को 11 प्रतिमाएं होती हैं, छुल्लक की भी 11 प्रतिमाएं हैं और अहलक की भी 11 प्रतिमाएं हैं, दोनों को 11 प्रतिमा, डिफरेंस इतना ही है कि इनको वस्त्र दो हैं, एक को वस्त्र, छुल्लक को वस्त्र दो हैं और अहलक को वस्त्र एक है, दोनों नियम से पैदल ही विहार करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, नियम से पैदल विहार ही करते हैं, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, गाड़ी का त्याग रहता है, क्योंकि बात यह है कि गाड़ी का त्याग क्यों, कुछ लोग पूछेंगे कि छुल्लक अवस्था में तो कुछ लोग गाड़ी में बैठ के आते हैं अपने गांव, आए कभी हम ऐसा, छुल्लक महाराज लोग गाड़ी में बैठ कर कभी आए कोई, आते हैं, आप लोगों को क्या मालूम, दुकान में रहते हैं हमेशा, बस दुकान और घर, दुकान और घर दो ही, महिलाओं को सब मालूम है, इनको तो सब करना पड़ता है। छुल्लक जो है गाड़ी में बैठ करके आते हैं तो वो वस्तुतः छुल्लक नहीं है, वो आगम के अनुसार गलत चर्या है, वो गुरु की चर्या ऐसा होती नहीं, उनको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए, आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि व्यर्थ है कि उनका वो जाने हमको क्या लेन देना, वो तो आए थे, हमने आहार दे दिया, नमस्ते इच्छा में कर दिया और भेज दिया, विहार करके आ गए, विहार करा के आ गए, ये ठीक है क्या श्रावक की ऐसी क्रिया, हा? कोई गाड़ी में आया तो उनकी चर्या की परीक्षा करके कुछ करोगे? सेवा वैयावृत्ति क्या वो मनमाने कर रहा है उसकी भी सेवा करोगे? गुरु समझोगे? आज त्यागियों में शीतलाचार क्यों आ रहा है मालूम? श्रावक देखता ही नहीं उनके तरफ, सेवा में लग जाता है तो मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा हो रहा है। साधु ने अपना धर्म बिगाड़ दिया। महावीर भगवान ने कहा कि क्षुल्लक हो तो गाड़ी में नहीं बैठना, तैलक हो तो गाड़ी में नहीं बैठना, क्योंकि हाथ में पीछे और कमंडलू है, पिंछी किस लिए दिया है? जीव रक्षा के लिए। अब गाड़ी में बैठोगे तो जीव रक्षा कहां से होगी? परमिशन है क्या गाड़ी में बैठने के लिए क्षुल्लक को? हा? नहीं है। और ऐसा क्षुल्लक कोई आए गाड़ी में बैठ करके आए, प्रत्यक्ष देखा, और फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं कि कुछ कह भी नहीं रहे हैं और वयावृत्ति में लग गए, सेवा में लग गए। ये क्यों लग गए सेवा में श्रावक? मालूम नहीं था इसलिए। सारा अनर्थ, सारे भ्रष्टाचारी धर्म के मार्ग पर कहां से हो रही मालूम? अज्ञानी श्रावकों के कारण से भ्रष्टाचारी साधुओं में आ रही है। साधु रत्नत्रय से आज भ्रष्ट हो रहा है, साधु धर्म छोड़ करके चल रहा है और उनका चल रहा है किस कारण से? साधु समाज को छोड़ करके रहता नहीं, रह नहीं सकता, समाज में ही रहता है। श्रावक के बिना साधु का नहीं चलता और साधु के बिना श्रावक का धर्म नहीं चलता। साधु ज्ञान देता है और श्रावक आहार देता है, ये दो संबंध तो है ही अनादिकाल से, और ये दो संबंध जब तक रहेंगे तब तक धर्म जीवित रहेगा, और ये जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन धर्म डूब जाएगा, और ये धर्म डूबा हुआ है। साधु का धर्म डूबा हुआ है, उसका जिम्मेदार साधु नहीं श्रावक है। कोई भी आ जाए स्वागत, कोई भी आ जाए स्वागत, अरे कहां का मूर्ख। मुनि का दोष नहीं देखना, बड़े लोग ये कहते थे। बताओ ये बड़े लोग क्यों कहते थे ऐसे? उनको भी मालूम नहीं था, यानी वो भी मूर्ख थे क्या? नहीं, अपने बुजुर्गों को आप छान्या नहीं समझना, उनको मूर्ख टाइटल ही देना। पहला पासुन वाले ही थे सब। थोड़े थे, आते नहीं थे बिल्कुल, मुनि तो थे ही नहीं, बहुत कम थे। और उसमें शांति सागर महाराज ने ऐसी मुनि परंपरा को उठाया कि उन्होंने अपने जीवनचर्या में खुद शीतलाचार नहीं रखा, वो मंत्र तंत्र नहीं करते थे, वो परिग्रह नहीं रखते थे, संघ में आरिकाओं को नहीं रखते थे। रखते थे? शांति सागर जी की चर्या आपको मालूम है? उनकी जीवन चरित्र को पढ़ लो। मिथ्यात्व के संपोषक वो नहीं थे, और आज के साधु इसमें से एक भी गुणधारी नहीं है। और वो कहता है शांति सागर जी का नाम लेकर कि शांति सागर जी की परंपरा डूब रहे, बचाओ। अरे मूर्ख, शांति सागर जी की परंपरा को बचाता है। पहला शांति सागर बन, फिर बाद में चिंता कर शांति सागर जी की परंपरा का। पहला आचरण फिर परंपरा। साधु आज शीतलाचारी इतना हो गया है, और ये शीतलाचारी साधु क्यों पनप रहे हैं समाज में? जैन धर्म डूब गया है कि नहीं? जीवित कहां है? साधुओं में ही धर्म डूब गया तो तुम उपासना किसका करोगे? जो दशलक्षण पर्व आ रहा है उस समय तो तुम 10 धर्मों की पूजा करोगे, उत्तम क्षमा मार्ग मार्जव, ये होते किसमें है? साधु में होते हैं ना, साधु में ये 10 धर्म होते हैं, और साधु का धर्म 10 धर्म डूबा हुआ है तो पूजा किसकी कर रहे हो? क्या उस नंगे वेश की पूजा कर रहे हैं? क्या वह नंगा वेश पूजनी वंदनीय है? महावीर भगवान ने कहा है असंजदम न वंदे, और इसका ज्ञान श्रावक को नहीं, और आपका बुजुर्ग वो व्यक्ति कह रहा है कि साधु के दोष नहीं देखना चाहिए, और भगवान कह रहे हैं कि दोष देखो और गुण भी देखो, दोष हो तो उसको त्याग कर दो और गुण हो तो उसको पूजो, ये भगवान का संदेश है। अब भगवान का माने कि इस बुजुर्ग व्यक्ति का माने? बड़ी समस्या है, और ये शतमानों से चला आ रहा है, धर्म से आपको ज्ञान से वंचित रखा गया है। धर्म का मार्ग किसी ने बताया ही नहीं, ज्ञान का मार्ग किसी ने बताया ही नहीं, ज्ञान से ही दूर रखा गया आपको, और ऐसे खोटे साधुओं की सेवा करोगे तो उसका परिणाम भी बताया है भगवान महावीर ने, परिणाम बताया है, क्या गति मिलेगी उसका वर्णन है, पढ़ना चाहिए। अंधे होकर के सेवा नहीं करना, आंख खोल करके सेवा करना। अगर दोष होता है साधु में, श्रावक सुधारने का जिम्मेदार है। मैं सेवा तभी करूंगा जब गुरु का आचरण सच्चा दिखेगा। ये श्रावक को ऐसा विचार करना चाहिए कि नहीं, क्या पाप लगेगा? हाँ? शास्त्र क्या बता रहा है, भगवान महावीर ने क्या बताया? परीक्षा मत करो कहा? हाँ, ये साधु का काम है वो सुनना। हाँ, और यही प्रवचन दे दिया, इधर आना, आ गए, ये मंत्र लेना। जी हाँ लेता हूँ, काय के लिए? दुकान में रखना, 100 रुपए देना। साधुओं ने श्रावकों को मूर्ख बनाया, असली ज्ञान नहीं दिया, खुद परिग्रह इकट्ठा करने हेतु पैसा धन इकट्ठा करने हेतु मंत्र तंत्र को दे। एक कड़वा प्रवचन है साधुओं के लिए, और जो स्वाध्याय नहीं करते, जैन तत्व समझते नहीं, अध्ययन नहीं करते, उन श्रावकों के लिए भी कड़वा प्रवचन है ये, महावीर भगवान का, मेरा नहीं, महावीर भगवान का। वो क्या कह रहे हैं? असंजदम न वंदे, ये कड़वा प्रवचन नहीं है क्या? असंयमी कौन है? कौन से साधु को असंयमी समझोगे? जो परिग्रहधारी है, और पैसे के लिए जो मंत्र तंत्र कर रहा है वो साधु क्या भ्रष्ट है, क्या संयमी है? अभी आज तक समझ में नहीं आई थी, किसी ने खोल के नहीं बताया था। महावीर भगवान तो आने वाले नहीं, अवतरित होने वाले नहीं, पुनः कहने के लिए वो तो कह करके चले गए, जिम्मेदारी सौंप दिया श्रावकों को, पीछे रहने वाले श्रावकों को और मुनियों को, ये जिम्मेदारी हमारा बन गया है कि धर्म डूब रहा है तो नया को बचाओ, सच का उद्घाटन करो, सत्य को बोलो। साधु होकर मिथ्यात्व में पड़ रहा है, साधु होकर परिग्रह में पड़ रहा है, साधु होकर गाड़ी में घूम रहा है, साधु होकर साधु की क्रियाओं को छोड़ के बैठा है, ये क्या साधु के लिए शोभनीय है? और ऐसे साधु को देख करके आप लोग बिल्कुल झुक जाते हैं कि पीछे कमर लो और नग्न द्वेष दिख गया तो बिल्कुल साधु साधु समझ गए। ऐसा नहीं होता, साधु के वेश में वो बंदर है। अगर परिग्रह इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, तो साधु के वेश में डाकू है जो आपको लूट रहा है। कड़वा प्रवचन आज भी, साधु के वेश में डाकू बन करके लूटना बहुत आसान है। सीता को कैसे लूटा रावण ने, देखा है कि नहीं सीरियल में? सीधा राज अवस्था में नहीं आया, राज अवस्था में आता तो सीता भाग जाती। कैसे आ गए थे? साधु वेश में, यानी साधु डाक। देखो, दूसरे को लूटने के लिए साधु वेश एक इतना बढ़िया साधन है कि कोई पहचान नहीं पाएगा अपने को। धन लूटना चाहते हो लूट सकते हो साधु वेश में, स्त्री को लूटना चाहते हो लूट सकते हो साधु वेश में, बहुत आसान है लूटना। क्योंकि दुनिया मूर्ख बनती है इस वेश के सामने, मूर्ख बनाया जा सकता है दुनिया को इस वेश को धारण करके। दुनिया को डराया जा सकता है साधु के वेश में। डरते हैं कि नहीं साधु से? बहुत डरते हैं। पर दुनिया किससे नहीं डरती? किससे नहीं डरती? दुनिया ज्ञानी साधु से नहीं डरती, दुनिया धोखेबाज साधु से डर जाती है। और आज उल्टा हो गया है, ज्ञानी साधु से तो भाग रही है समाज। वो समझते होंगे घर में बैठ करके, ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, वो ऐसा है ऐसा है। और खोटे साधु के लिए पैसा देकर के लूट रही है। देख रहे हैं क्या नहीं? आंखों से दिख रहा है क्या नहीं? समुद्र उमड़ता है खोटे साधुओं के पीछे। सावधान रहना है, लूटना नहीं। अरे लूटना नहीं, साधुओं को लूटना सीखो। खुद नहीं लूटना, नहीं खुद नहीं लूटना, साधुओं को लूटना। साधु परिग्रही है तो परिग्रह को लूटो, उनके पास जो कुछ भी है, पाप नहीं महान पुण्य है। साधु को धर्म मार्ग पर लगा रहे हो, ये पाप का काम नहीं, ये बड़ा पुण्य का काम है। साधु गांव में आता है, आने से पहले ही परीक्षा करो उसकी कि परिग्रहधारी है क्या है। ये धर्म का उपदेश देता है, तत्व का उपदेश देता है कि मिथ्यात्व का उपदेश देता है, ये पहली सी परीक्षा करो साधु की। फिर बाद में साधु को बुलाना। ऐसा तो नहीं कि रावण के वेश में रावण वेश बदलकर साधु वेश धारण करके एक रावण का रूप आ रहा हो आपके गांव में, लूटेगा कि नहीं? उसकी परीक्षा कौन करेगा? अगर सीता परीक्षा बुद्धि वाली होती, साधु की परीक्षा करने वाली होती तो लूट जाती? सीता को परीक्षा बुद्धि रखना चाहिए थी कि नहीं? और रावण ने कैसा खेल खेला, राम को तो यूं निकाल दिया उधर, हिरण बनाकर छोड़ दिया और पीछे उसके पीछे वो भाग गया। राम तो उधर गया और सीता को लूटना था। ऐसे समाज को लूट रहा है आज साधु। इस साधु को जब तक तुम परीक्षा बुद्धि से नहीं देखोगे तब तक धर्म डूबा हुआ रहेगा, और जिस दिन आंख खोल करके उनको देखना प्रारंभ करोगे धर्म उसी दिन बच जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं समाज के लिए आंखें चाहिए, समाज के लिए स्वाध्याय चाहिए, समाज के लिए जैन तत्वों का चिंतन मनन चाहिए, समाज के लिए निर्भीकता चाहिए, समाज में एक गंभीरता चाहिए, समाज में एक दूर दृष्टि चाहिए, समाज में धर्म के प्रति समर्पण चाहिए, समाज के लिए समर्पण चाहिए, समाज के लिए देश के प्रति समर्पण चाहिए। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, दुकान और घर बस, ये जीवन हो गया है, इतना ही है कि जीवन। तुम खुद जिससे लूट रहे हैं वो तो ध्यान में नहीं आएगा। अगर ये जिनवाणी का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप जिस किससे लूटेंगे कैसे लूटेंगे इसका ज्ञान आपको रहेगा नहीं, लूटते रहेंगे। बहुत अध्ययन करना चाहिए जैन तत्वों का। मैं इसलिए कह रहा हूं अध्ययन करने के लिए कि आपको लूटने से मैं बचाना चाहता हूं। आपको जो लूटने आ रहे हैं लूट रहे हो उसमें जगाना चाहता हूं। आंख मेच करके कोई काम नहीं करना, आंख खोल खोल करके काम करना है। बहुत हो गया, सैकड़ों सालों से हम लूट गए हैं, अब नहीं लूटेंगे, अब नहीं लूटेंगे। हम अध्ययन करेंगे, जैन शास्त्र समझेंगे, जैन तत्व समझेंगे, हम अपना भी कल्याण करेंगे और साधु का भी कल्याण करेंगे। ऐसे कोई भ्रष्टाचारी साधु आ गया तो बिल्कुल साफ सुथरा, तो डंके की चोट के साथ चुनौती देना उनको कि यहां पर मिथ्या तो चलता नहीं है। अब डरना नहीं, भागना नहीं, अब तो लड़ना है साधुओं से। साधु से जिस दिन श्रावक लड़ेगा समझ लेना धर्म उस दिन बचेगा। साधु से पूछने का हिम्मत जिस दिन आएगा श्रावक में उस दिन धर्म बचने वाला है। साधु डाकू बन गया है, ध्यान नहीं दे रहे हो। धन मांग रहा है तो धन दे रहे हैं, सोना मांग रहा है तो सोना दे रहे हैं, चांदी मांग रहा है तो चांदी दे रहे हैं। ये कैसी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा। परिग्रह साधु को दे करके उनको भी डूबो रहे हो और खुद भी डूब रहे, खुद का धर्म भी डूब गया उनका भी डूब गया। जिसने साधु को भ्रष्ट किया वो कहां जाएगा धन दे करके, उसकी दुर्गति नहीं क्या, देने वाले की दुर्गति नहीं क्या, वो दान समझा जाएगा। श्रावक की भी दुर्गति है और साधु की भी दुर्गति है। साधु जब दीक्षा लेता है आप देखते हैं, आप जैन श्रावक हैं, जैन साधु को साधु मानते हो, मुनि मानते हो, पंच परमेष्टि के भीतर पूज्य समझते हो, नमस्कार करते हो, आदर रहता है, भक्ति रहती है। साधु जब साधु दीक्षा लेता है सोचो क्या क्या छोड़ता है, उस समय क्या संकल्प लेता है स्टेज पर। गुरु से जब दीक्षा लेता है कितने व्रत लेता है ये मालूम है, महाराज जी भी मालूम नहीं कौन से व्रत लेता है और क्या लेता है। और इतना भी पता है नहीं है श्रावक को कि साधु क्या क्या व्रत ले चुका है और लेता है, तो श्रावक निरामूरख है, वो इतना भी ज्ञान नहीं रखता कि साधु के पास कौन कौन से व्रत होते हैं। तो लिख के रखो कि साधु को कितने व्रत होते हैं और क्या साधु लेता है और दीक्षा के पश्चात साधु को कैसे रहना चाहिए। पांच महाव्रत होते हैं उसके, लिख के रखना। प्रवचन में आने वाले ज्ञान का लाभ उठाने वाले, मेरी बात एक और मानोगे, कल से कॉपी ले आना, 100 पेज की कॉपी साथ में लाना है। लाओगे ना, तो उदासीन बैठ करके यहाँ कुछ नहीं सीखना है, समर्पित होकर के कुछ समाज के प्रति अपने जीवन के प्रति करना है। एक कॉपी जरूर ले आना, नोट्स करना है, शिक्षा की बातें उसमें लिखना है। महाराज ने ये पढ़ाया था, ये सिखाया था, और ये चिंतन के हैं, ये मनन के हैं, लिख के रखो, प्रमाद मत करो। प्रमाद प्रमाद प्रमाद, इस प्रमाद ने ही डुबाया हमारे ज्ञान को, डुबाया उत्साह को, डुबाया सबको डुबाया। कल सभी लोग एक कॉपी अवश्य ले आएंगे, कॉपी पेन साथ में लाएंगे। मैं कल पूछूंगा, नहीं लाएंगे तो स्टैंड अप कर दूंगा। छोटे बच्चे जैसे सब बताना पड़ रहा है, कुछ चिंता ही नहीं किसी को, कुछ हमको लिखना है, कुछ समझना है, कुछ नोट्स भी करना है, चिंतन करना है, विद्यार्थी बनकर के सीखने के विचार ही नहीं। कैसा है जीवन, क्या जी रहे हो, सबके हाथ में नहीं है, आप तो लाए हैं। कैसा प्रमाद, अभी नींद टूटी नहीं क्या, क्या करना है जिंदगी में, यहाँ विद्यार्थी बनकर के कुछ समय पढ़ना है, गुरु से शिक्षा लेना है, जीवन को बनाने हेतु, खुद का जीवन बनेगा इससे। कल पूछूंगा, इधर भी पूछूंगा, जिसके पास कॉपी नहीं है, लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, केवल सुनना है, और जिसको लिखना आता है उनको तो लिखना भी चाहिए, रुचि रखना चाहिए, लिखना भी चाहिए, चिंतन भी करना है, मनन करना चाहिए। कल किसी ने पूछा कि तुम्हारे साधु के पास कितने व्रत होते हैं, कौन कौन से व्रत होते हैं, मूर्ख रहोगे उनके सामने, कुछ नहीं बताओगे। कि हमारे साधु के पास देखो अहिंसा महाव्रत होता है, सत्य महाव्रत होता है, अचौरी महाव्रत होता है, ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है, अपरिग्रह महाव्रत होता है, हम इसकी परीक्षा करके ही साधु को नमन करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, है ना। लिखोगे बता दो, अहिंसा महाव्रत। आज जो कॉपी नहीं लाए हैं कल कॉपी में लिख लेना इन बातों को, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अचौर्य अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, अहिंसा महाव्रत का अर्थ है साधु जीव हिंसा नहीं करता। अचौर्य महाव्रत अहिंसा महाव्रत का क्या अर्थ है? जीव हिंसा नहीं करता, साधु जीव हिंसा नहीं करता। दूसरा है सत्य महाव्रत, साधु झूठ नहीं बोलता। साधु झूठ नहीं बोलता। साधु चोरी नहीं करता। अचौरी महाव्रत का अर्थ साधु चोरी नहीं करता। साधु ब्रह्मचर्य से रहता है। साधु ब्रह्मचर्य से रहता है। साधु परिग्रह इकट्ठा नहीं करता। समस्त वस्तुओं का त्यागी होता है। समस्त वस्तुओं का त्यागी होता है। अब देखो आप लोग श्रावक हैं, साधु को समझो पांच बातों से। साधु पहले नंबर का क्या है? साधु अहिंसा महाव्रत का पालन करता है। तो क्या नहीं करता? हिंसा, जीव हिंसा नहीं करता। साधु देखो कितनी दया, कितनी करुणा, कितना उनका सूक्ष्म धर्म होता है, कितना नाजुक धर्म होता है। दुनिया में सबसे बड़ा अहिंसक यदि कोई है तो दिगंबर साधु है। उनके माध्यम से एक भी जीव का घात नहीं होता। चलते हैं देख करके चलते हैं। देख करके क्यों चलते? वो ऊपर मुख ही नहीं उठाते, नीचे देख करके चलते हैं। नीचे देख करके चलने वाला साधु या ऊपर देख करके चलने वाला साधु? सुन रहे हैं? नींद आ रही है, सुन रहे हैं? साधु के संबंध में जानकारी दे रहा हूं कि किस साधु की सेवा करना। साधु देख करके नहीं चल रहा है, दया का पालन नहीं कर रहा है, साधु पिंची नहीं लगाता है। पिंची काय के लिए रखा है? पिंची किसने दान में दिया? दान में किससे मिला साधु को पिंची? श्रावक ने दिया। काय के लिए दिया तुमने? जीव हिंसा के लिए। और दे दिया और साधु लगा करके बैठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। और जंगल जा रहा है तो संडास में जा रहा है, क्या बोलते उसको? संडास में नहीं जाता, क्या बोलते उसको? लेट्रेन। हाँ, लेट्रेन में साधु मान लो जंगल गया, जा सकता है क्या? बोलो तो, जाने में क्या क्या दोष है? जंगल जाने से पहले साधु वहाँ पर घास है क्या नहीं, वहाँ पर चीटी है क्या नहीं, वहाँ जीव जंतु है क्या नहीं देखता है, पिंछी लगाता है। जीव हो तो पिंछी लगाकर वहाँ जंगल बैठता है, ये साधु की क्रिया है। और पिंछी तुमने उसी कारण से दिया है। आज तक श्रावकों ने साधुओं को पिंछी तो दिया, लेकिन किस उद्देश्य से दिया ये उनको मालूम नहीं। शायद हो सकता है मेरे विचार से क्यों दिया होगा, मैं बता रहा हूँ। महाराज के हाथ में पिंछी कमंडलू रहेगा तो ही पूज्य समझे जाएंगे, नहीं तो वो साधु ही नहीं। पिंछी कमंडलू के बिना तो साधु होता ही नहीं। अब पिंछी कमंडलू हो तो ही नमस्कार करना चाहिए, इसलिए हम नमस्कार करने हेतु देते हैं। पिंछी को भी नमस्कार करते हैं और उस नग्न मुद्रा को भी नमस्कार करते हैं। क्या तुमने नमस्कार करने के लिए पिंछी कमंडलू दिया है? ये पिंछी का दान उपकरण का दान कहलाता है, संयमोपकरण है ये। इसका नाम क्या है? संयमोपकरण। संयम प्राणी संयम, जीव की रक्षा प्राणी संयम है। इस प्राणी संयम की रक्षा के लिए ये दिया गया है। और साधु आपके द्वारा दिया गया दान का उपयोग नहीं कर रहा है, उसको लगा नहीं रहा है, लगा करके उठ नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, ना कुछ भी। कई तो साधुओं की स्थिति ऐसी है, पिंछी दूर रखते हैं, जाकर के जंगल बैठ जाते हैं, लगाते नहीं। लगाते ही नहीं। और लगाना चाहिए कि नहीं? तुमने तो लगा कर लगाने के लिए दिया है, ये बात अलग है कि नमस्कार करने के लिए दिया हो। लगाने के लिए दिया था, अब उसके माध्यम से जीव की रक्षा का काम नहीं हो रहा है। तो साधु के हाथ में जो ये पिंछी है, इससे जीव की यदि रक्षा नहीं करता है तो ये पिंछी परिग्रह बन जाएगा का उपकरण बन जाएगा। इसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, जिस उद्देश्य से दिया है श्रावक ने उसी काम में हम नहीं लेते हैं, तो ये हमारा परिग्रह हो गया। और पिंछी के कारण से साधु फिर वंदनीय नहीं। बोलो, जो दिया है वो परिग्रह भी हो सकता है, पर साधु जिस उद्देश्य से श्रावक ने दिया है उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो वो परिग्रह नहीं, उपकरण है, संयमोपकरण। ये वस्तु उपकरण कहलाता है, ये कोई खाने पीने की चीज में नहीं आता, काम में नहीं आता। हाँ ये जरूर है कि साधु वेश तो है, ये साधु वेश तो है, और इस साधु वेश में हम इसको रख करके लूटने जा रहे हो तो इसको देखने से लोग नम्र रहते हैं, लूटा उनको लूटा जा सकता है ना, रावण जैसे बन सकते हैं ना अपन, है धन लूट सकते हैं। देखो पीछे कमंडलू है, मुझे दान दो, तुमको मंत्र देता हूँ। साधु तुमको लूट रहा है और दोनों का धर्मघात हो रहा है, श्रावक का भी धर्मघात हो रहा है और साधु का भी धर्मघात हो रहा है। धर्म तो गया, ये दोनों ही वेशधारी हैं केवल, वो श्रावक भी वेशधारी, उनमें भी गुण नहीं और साधु में भी गुण नहीं, दोनों ही वेशधारी हैं। अब धर्म है कहाँ? धरती पर धर्म नहीं, धरती शून्य है धर्म से। बहुत सोचना है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज तक तुमने जो किया है श्रावक अवस्था में रहकर उसका नाम अधर्म आप जो करना है उसका नाम धर्म। अभी तक किया ही क्या है, ज्ञान के बिना कुछ भी करना सब अधर्म की कोटि में माना जाता है। ज्ञान पूर्वक कुछ करना ये धर्म की कोटि में माना जाता है। बड़ी जिम्मेदारी है समाज की। आप जैनी हैं, जैन कुल के हैं, जैन धर्म बचाना है तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। यहाँ सबसे पहली जिम्मेदारी कि आपको ज्ञानी बन करके जीवन जीना, पहली जिम्मेदारी। दूसरी कि साधु को भ्रष्ट वेश में आंखों से देखना भी नहीं होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। अगर साधु भ्रष्ट दिखा तो, परिग्रही दिखा तो, जीव अहिंसा का पालन नहीं कर रहा है तो मन में दुख होना चाहिए कि नहीं? ऐसी कैसी, हे भगवान, हम पवित्र वेश, साधु वेश, पवित्र वेश, साधु वेश, इस वेश में आकर के ये वो व्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा दुख होना चाहिए कि नहीं आपको? हाँ, और ये दुख कब होगा? ज्ञान आने पर होगा क्या? मूर्ख रहने पर भी हो जाएगा वो? आज मूर्खों को दुख तक नहीं होता, उसका कारण है ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो ही दुख होगा, दया आएगी साधु पर। साधु को तो साधु की तरह रखना है आपको, और श्रावक को श्रावक की तरह रहना है। श्रावक अगर श्रावक की तरह नहीं रहता है तो खप जाएगा, लेकिन साधु साधु की तरह नहीं रह सकता, रह पाता है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। साधु तो समाज का आदर्श होता है, दर्पण होता है, उसको देख देख करके हमें जीना होता है। हमारे दर्पण है वो, हम उसमें देखते हैं और अपने जीवन को बनाते हैं। और उस दर्पण में ही मलिनता है तो उससे क्या शिक्षा मिलने वाली है? खुद सुधरने से पहले साधु को सुधारना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साधु को पहले सुधारो, साधु को पहले ठीक बनाओ, क्योंकि उसी आदर्श का अनुकरण हमें करके जीना है। अभी इतना भी ज्ञान नहीं कि पांव किसका पड़ना, बताओ क्या है समाज में, क्या है श्रावक, पांव किसका पड़ना यही मालूम नहीं? सबका पांव पड़ रहा है। बाजार के कुदेवता भी ठीक, मंदिर के वीतरागी देवता भी ठीक, कुसाधु आ जाए वो भी ठीक, सुसाधु आ जाए वो भी ठीक, सब बराबर। घचल पचल हो गया सब जैन धर्म। दक्षिण में धर्म दिखता ही नहीं हमको। और धर्म तब दिखेगा जब श्रावक ज्ञानी दिखेंगे, तब धर्म दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जब श्रावक शास्त्र पढ़ना प्रारंभ करेगा, प्रवचन सुनना प्रारंभ करेगा, उसमें रुचि जगाएगा, आस्था से आकर के बैठने लग जाएगा, श्रद्धा से आकर के बैठने लग जाएगा, कुछ करना चाहेगा, तब धर्म दिखना प्रारंभ होगा। सबसे पहला काम साधु का प्रवचन सुनना रोज। सबसे पहला काम दूसरा काम साधु आने पर साधु है या नहीं परीक्षा करना। ये करोगे तो धर्म बचने वाला है, अन्यथा शांति सागर जी जो समाधि मरण के काल में कह करके चले गए उनके वचन डूब रहे हैं। शांति सागर महाराज ने कहा है उपेक्षा करो उस साधु की जिस साधु में संयम नहीं, जिस साधु में परिग्रह है, जिस साधु में मिथ्यात्व है, जिस साधु में क्या है ज्ञान नहीं हो तो चलेगा साधु को। हाँ आचरण चाहिए, साधु ज्ञान न हो तो सेवा करो कोई दिक्कत नहीं, पर क्या चाहिए आचरण। उनके ये पांच महाव्रत जो आज हमने लिखाया है इनको देखना चाहिए साधु में, साधु जीव अहिंसा का पालन कर रहा है कि नहीं, साधु झूठ बोलता है कि नहीं, ये देखना। तुम हजार झूठ बोलो चलेगा, लेकिन साधु झूठ बोलता है क्या नहीं पहला देखो। महाराज ऐसे कैसे कह रहे हो, साधु की परीक्षा करने से पहले हमें परीक्षा करने की ताकत भी होना चाहिए और हमारे में आचरण भी होना चाहिए, तब हम साधु की परीक्षा करेंगे तब धर्म बचेगा। तुम धर्म ऐसे कभी न बचा पाओगे न बच पाएगा। तुम झूठ बोलना छोड़ नहीं सकते क्योंकि गृहस्थ हो, दुकान में तो झूठ बोलना ही पड़ता है क्या नहीं साधु को। साधु झूठ बोल सकता है क्या नहीं मैं पूछ रहा हूं। हा? जो देखो साधु झूठ बोल सकता है क्या नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, बोल सकता है कि नहीं। सच्चा साधु का नहीं तो पूछ रहा हूँ, सच्चा साधु के वेश में जो आया है तो किस रूप किस किस रूप में बोलेगा, किस किस रूप में बोल सकता है वो। झूठ बोल सकता है, कैसे बोल सकता है देख लेना जरा, तुमको कैसे ठगाता है वो। हाँ जानकारी तो लेना चाहिए कैसे साधु ठगाता है, साधु ही बोल रहा है तो साधु से सुन ले। हाँ तुम तो श्रावक हो, मैं ही बोल रहा हूँ ना, साधु कैसे ठगाता है, ठगाने की क्या क्या प्रक्रिया है। साधु सबसे पहले तुम्हें लोभी बनाता है, लोभी बनाता है। क्या लोभी बनाता है, तुमको मैं मंत्र देता हूं तुम मुझे धन देना, और मंत्र कौन सा मंत्र, तुम्हारी दुकान चलाने लायक मंत्र, और तुम लोभ में आ जाते हैं। दुकान चलती है तो बहुत बड़ी बात हो गई, मंत्र से दुकान चलती है तो बहुत अच्छी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। लोभ में आते हो क्या नहीं, श्रावक तो छोटे छोटे संकटों में साधु के पास भाग के जाता है और उससे दुखड़ा अपना दुखड़ा रखता है सामने, साधु के सामने कहता है कि महाराज बहुत दुख है, ऐसा कोई मंत्र दो जिससे कि मेरा दुख दूर हो। और साधु क्या करता है, कौन सा दुख पूछता है, तो दुकान ठीक से नहीं चल रही है। अब इसका दुकान ठीक से न चलना ये किस कारण से हो रहा है, उस मूर्ख को पता नहीं है, उस मूर्ख को पता नहीं है दुकान क्यों ठीक नहीं चल रही, इसका ही ज्ञान नहीं रखता। यहीं पर है सारा अनर्थ, यहीं से होता है, प्रारंभ होता है। दुकान ठीक क्यों नहीं चल रही इसका रहस्य पता नहीं उसको, और महावीर भगवान ने उसका रहस्य पता लगाया है। वो शास्त्र बोल रहा है आज तुम्हारा दुकान क्यों नहीं चल रही है, उसका उत्तर क्या होगा। कुछ लोगों को पता भी है इसका उत्तर, बहुसंख्यक लोगों को पता नहीं होगा, मूर्खता होगी, ठीक है, वो मूर्खता होती है तो आज उसको निकाल ले अपन दिमाग से। दुकान नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती हमारी? हमारे पाप कर्म। ये पाप कर्म हमने कैसे कमाया? पाप कर्म बंधे हैं, उसके उदय में हमारी दुकान नहीं चल रही है। इस पाप को हमने इकट्ठा कहां से किया, कब किया, किन परिणामों से किया, क्या कार्य करने से ये पाप आया है? हाँ, हिंसा करने से भी पाप आया है, झूठ बोलने से भी पाप आया है, राग द्वेष करने से, दूसरे को अनिष्ट करने से, दूसरे से ईर्ष्या करने से, कषाय करने से, क्रोध करने से, मान करने से, अहंकार करने से, लोभ करने से, इन्हीं भावों के कारण से जीव पाप को बांधता है। ये भगवान महावीर की वाणी है। और ये पाप कर्म जब उदय में आता है, जीव को धन संपत्ति से वंचित रहना पड़ता है। ये आंतरिक रहस्य है। क्या तुम्हारे पाप को मिटाने की शक्ति साधु रखता है? और पाप कर्म का उदय हो तो चाहे कितना भी बड़ा मंत्र दे दे, भगवान महावीर भी दे दे, साधु क्या, भगवान महावीर भी दे दे, तुम्हारा दुख दूर नहीं हो सकता। भगवान भी आकर के तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकते। ये पाप कर्म कहलाता है। और दुकान चलेगी पुण्य कर्म के उदय में। अब मैं पूछता हूं कि पुण्य कैसे आता है, बोलो। हिंसा न करने से, झूठ न बोलने से, चोरी न करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, परिग्रह का संग्रह अति न होने न करने से, या परिग्रह त्यागने से पुण्य आता है। साधु साक्षात इन पंच व्रतों का धारी हैं, वो सदा ही पुण्य को एकत्रित करते रहते हैं। है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं? तुम कर्म पर विश्वास करोगी कि नहीं? और जो कर्म पर विश्वास नहीं करता, वो मूर्ख ही साधु के पास मंत्र के माध्यम से दुकान चलाना चाहता है, दुखड़ा दूर करना चाहता है, अधिक अधिक संकट में और जाता है वो। और अधिक संकट में इसलिए जाएगा, साधु के पास जाकर के तुमने मंत्र ले लिया तो साधु को परिग्रही बनाया, तो एक महाव्रति का, एक धर्मात्मा का तुमने नुकसान किया, उसको परिग्रही बनाया, उससे दुकान चलाने का मंत्र ले लिया तो उसको परिग्रही बनाया, तो उसने आपके दुकड़े को देख करके परिग्रह दे दिया, तो ये परिग्रह देना साधु का क्या काम था? साधु तो परिग्रही बन गया। क्या साधु संसार को चलाने के लिए है? बोलो, किस लिए है साधु? क्या तुम्हारे संसार को बनाने के लिए है? तो साधु किस लिए है? तुम्हारे किस काम में आता है साधु? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारे आत्म कल्याण का मार्गदर्शन देने के लिए, और आपके पूजा करने के काम में आते हैं साधु। आप पूजक हो, साधु पूज हैं, व्रतों के कारण से पूज हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये व्रत हैं। उन व्रतों के कारण से साधु पूज है और श्रावक पूजक है। और ये पूजक साधु की पूजा करता है तो पूजा करके क्या कमा रहा है? पुण्य कमा रहा है। अब वो पुण्य आपको क्या दे रहा है? पुण्य क्या देता है? सुख देता है। पुण्य से दुकान चलती है क्या पुण्य के बिना दुकान चलती है? तो ये पुण्य दुकान चलने में सबसे बड़ा सहयोग देने वाला ये पुण्य आया कहाँ से? साधु की पूजा आपने की, दशलक्षण में 10 दिन समय निकालकर संसार के पापों से बचकर यहाँ आए, साधु को नमन किया, वंदना की, हे महाराज धन्य है आप, उत्तम क्षमा की धारी, उत्तम मार्दव धर्म की धारी, उत्तम आर्यों, उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी, उत्तम अपरिग्रह के धारी, धन्य है आप, धन्य है, धन्य है, आपकी पूजा करके मैं अपने जीवन को सफल बनाता हूँ, देख लेना महाराज मैं सफल बनाता हूँ, आपकी पूजा करूँगा तो मेरा पुण्य बढ़ेगा ही, इसमें गारंटी है, रत्ती मात्र फर्क नहीं हो सकता। गुणवान साधु की पूजा से पुण्य आएगा या पापी साधु की पूजा से पुण्य आएगा? तो गुण और दोषों को देखना क्या पाप है? परीक्षा करना पाप है क्या? महावीर भगवान ने बताया असंजदम न वंदे, असंयमी की वंदना मत करो। तो असंयम को तो समझना पड़ेगा अपने को, असंयमी है क्या नहीं, असंयम को देखे बिना वंदना से कैसे हम दूर रहेंगे? असंयम को देखो कह रहे हैं, ये दस धर्म है क्या नहीं देखो, ये असंयम है क्या नहीं ये देखो, फिर बाद में पांव पड़ो। ये भगवान के संदेश और यही शांति सागर महाराज का संदेश था। उन्होंने एक ही शब्द में कहा, मरण के टाइम में और समाधि के टाइम में भी उनको कहना पड़ा ये बात। क्या कहा? शिथिलाचारी संयम धारण भ्यू न का, वो तो कहा ही है आप लोगों के लिए कहा है, संयम धारण करो, डरो नहीं, आरिका बनो, मुनि बनो, आगे बढ़ो, धर्म की प्रभावना होती है, इसका नाम है भ्यू न का संयम धारण करा, ऐसा कहा है। वो बात नहीं, साधु के संबंध में क्या कहा, साधुओं को किस प्रकार देखना चाहिए श्रावक को, उसका भी संदेश मिला है। हाँ, साधु शिथिलाचारी हो, परिग्रही हो, मंत्र तंत्र करता हो, अपने व्रतों के अनुरूप चलता नहीं हो तो उनकी उपेक्षा करो कहा है। उपेक्षा का मतलब क्या? असंजदम न वंदे, महावीर भगवान असंजदम न वंदे कह रहे हैं और शांति सागर महाराज उन साधुओं की उपेक्षा करो कह रहे हैं, बात एक ही है ना। भगवान जरा डायरेक्ट कह रहे हैं और शांति सागर महाराज जरा इनडायरेक्ट कह रहे हैं, शब्द का फर्क है। उपेक्षा करो का मतलब क्या? उपेक्षा यानी कोई संबंध नहीं रखना, न नमन का संबंध, न आने जाने का संबंध, न दान का संबंध। यही है ना, यही तो अर्थ नहीं, और इससे दूसरा कुछ अर्थ हो तो मुझे बताओ। दूसरा अर्थ हो तो मैं फिर महावीर भगवान क्या कहते हैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा, शांति सागर जी को छोड़ दूंगा। महावीर भगवान असंजदम न वंदे कह रहे हैं, अब वंदना ही नहीं करो कह रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके प्रति हम क्या क्या करें, आगे का तो प्रश्न ही नहीं उठते। महावीर भगवान ने यह भी कहा है कि परीक्षा किए बिना अगर आपने दान दे दिया, सेवा कर दी, वयावृत्ति कर दी, तो कहा इससे तुम्हारे लिए दुर्गति मिलेगी, ये ठीक है, तुम कुबो भूमि नरक त्रियंच इस गति में भी जा सकते हो क्योंकि वो पाप का काम है, तुम जो कर रहे हो बड़ा पाप का काम है। ये कैसे पाप का काम? साधु साधु है कहाँ, परिग्रह है तो साधु नहीं, पाप का काम कर रहे हो, दान का काम ये पाप का काम, और ये पाप उनको फल नहीं देगा, वो तो जा ही रहा है नरक, लेकिन दान देने के देते समय पाप का काम जो किया आपने, उसका परिणाम क्या निकलेगा, किसको मिलेगा? वो कौन सा कर्म बांधा? शीतलाचारी साधु का, भ्रष्टाचारी साधु का, साधु पद से च्युत साधु का आपने सेवा की, तो पाप बांधा क्या पुण्य बांधा? ये लोगों को आज मालूम नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं क्या पुण्य कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं कि पाप कर रहा हूं, मालूम ही नहीं चलता। और इसलिए आंखें खोलना पड़ रहा है। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन। ज्ञानी साधु आंखों में अंजन शलाका लगा करके, आंख खोल करके देख क्या है बाहर, खोल करके बताता है। भगवान ने भी ऐसा ही ज्ञान ही दिया, अंजन शलाका के माध्यम से आपकी आंखें खोल दी। भीतर आंख, आत्मा की आंखें खोलने पर धर्म किया जा सकता है। भीतर की आंखें बंद रहेंगे तो धर्म करना असंभव असंभव असंभव। बहुत कठिन है धर्म कर्म में, बहुत कठिन है। दिमाग है, ज्ञान है तो ठीक, नहीं तो यहाँ भी पाप कमा रहा है और वहां भी पाप कमा रहा है, और ये डबल पाप। बल्कि मैं ये कहता हूँ, संसार में जो तुम पाप करते हो, दुकान में झूठ बोलना पड़ता है, वो तो अनिवार्य है, बहुत पाप होता है। उसी को धोने के लिए तो हम धर्म के घाट पर आते हैं, साधु के पास आते हैं, साधु के गुणों की पूजा करके हम पाप को धो करके कुछ कम करते हैं, हल्का करते हैं आत्मा को। यहाँ आकर के हम धोते हैं, और मान लो यहीं पर साधु भी पापी है और उसकी तुमने पूजा की, तो पाप को डबल बना करके डबल बनाया क्या, सिंगल रहा वहां का उतना ही रहा, डबल बन गया वो पाप। पाप डबल बन गया, बल्कि दुकान में तो सिंगल था वो, उससे डबल यहां आता है। यहां देखो, एक सामान्य नागरिक है, वो चोरी करता है तो इतना बड़ा अपराधी नहीं माना जाएगा, इतना घोटाला तो नहीं करेगा वो। परंतु वही व्यक्ति कल मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना या राष्ट्रपति बना, वहां जाकर के घोटाला करता है तो वो घोटाला बड़ा कहलाएगा क्या? इस अवस्था में रह करके करना घोटाला, ये बड़ा कहलाएगा? कौन सा बड़ा? प्रधानमंत्री तो करोड़ों का सौहा करता है, और आप कितने करते हैं? सैकड़ों का। किसी के 100 रुपए डुबाया तुमने, 1000 रुपए डुबाए, इससे ज्यादा तो नहीं डुबाया। अपराधी हो क्या? नहीं। चोर हो क्या? नहीं। चोर हो, लेकिन वो कितना घोटाला कर रहा है, वो महाचोर। अब ये पाप कार्य है क्या? नहीं। अब सोचो, तुम तुलना करो एक प्रधानमंत्री के साथ, अपनी तुलना करके पाप किसने ज्यादा कमाया और उसका फल किसको कहां कितना मिलेगा, कहां जाएगा वो है? आप यदि पहले नरक में गए तो प्रधानमंत्री किस नरक में जाएगा? वो 7वें नरक में जाएगा। ये सत्य रहेगा क्या असत्य निकलेगा? इसको तो कोई बदल नहीं सकता है ना। जिसने जितना किया है उतना फल भोगना ही पड़ता है, ये अकाट्य सत्य है। इस पर विश्वास ही करना पड़ेगा अपने को, इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हमने जरा किया है तो जरा का फल भोगेंगे, बहुत किया है तो बहुत का फल भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत, कर्म से ही हम सुखी दुखी होते हैं। टाइम हो गया है, जिनवानी करेंगे, ध्यान नहीं गया आज। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतलवा